भी जरूरी था वो या तो धरती से मिल जाता या हवा से। तभी जीवन की लीला में एक क्रांति आई जिसके नायक थे साइनोबैक्टीरिया, यानी हरे नीले रंग के बैक्टीरिया। इन्होंने अपनी रसोई खुद बनाना सीख लिया था, सूरज के प्रकाश और हवा से कार्बन की गैस खींचकर। पोषण की आत्मनिर्भरता की इस क्रांति से ये बैक्टीरिया ना जाने कितने हजार एकड़ में फैल गए थे, विशाल सौर पटलों के रूप में। आज भी पेड़ पौधे ऐसे ही अपना भोजन बनाते हैं। जीवन का, प्राण का ईंधन यही था। इस ईंधन को जलाने से कुछ धुआं सा भी निकलता था, एक विषैली गैस निकलती थी। हमारे पूर्वज बैक्टीरिया इस गैस को सांस के रास्ते बाहर निकाल देते थे, ठीक उस तरह जिस तरह हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ये विषैली गैस का स्वभाव हमारे वायुमंडल की दूसरी गैसों से अलग था। वे सभी स्थिर रहती हैं, पर ये बहुत ही प्रतिक्रियाशील थी। धरती के हर हिस्से पर इसका रासायनिक प्रभाव पड़ने लगा था। हर तरह के पदार्थ के साथ इसकी प्रतिक्रिया होती थी। इस प्रतिक्रिया से ये गैस सोख ली जाती थी, यानी इस कचरे का निपटारा सरल ढंग से हो जाता था। जीवन की ये रूपरेखा बहुत कामयाब हुई। हरे नीले बैक्टीरिया बहुत फले फूले और पृथ्वी पर इनका राज 1 अरब साल से ज्यादा चला। फिर इनका राज मिटने लगा आज से कोई 2.5 अरब साल पहले, क्योंकि इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। उस विषैली गैस का उत्सर्जन भी बढ़ा था जो इनकी सांस से बाहर आती थी। वो अब धरती के तत्वों से प्रतिक्रिया करके ठिकाने नहीं लग पा रही थी। उसकी मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार बढ़ती गई। क्रांति अब प्रलय में बदलने लगी। हमारे ग्रह और वायुमंडल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जो जीव इस नई गैस को सहन नहीं कर सके वे विलुप्त होने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जीवन के इतिहास में ये सबसे विनाशकारी अध्याय था, सबसे बड़ा प्रलय, पृथ्वी का सबसे विशाल प्रदूषण। लेकिन पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका रूप बदल गया। अब वे ही जीव पनप सके जो वायुमंडल में मौजूद इस विषैली गैस को सहन करना जानते थे। जो नहीं सीख पाए वे कुछ ऐसी विशेष जगहों पर सीमित रह गए जहां ये गैस पहुंच नहीं पाती थी, जैसे दलदलों और समुद्र की गहराइयों के नीचे। हम जैसे प्राणियों की आंतों के भीतर ऐसे जीव अब भी मौजूद हैं। दूसरे सभी जीवों ने कालांतर में इस विषैली गैस का इस्तेमाल करना सीख लिया। उनकी हर कोशिका में